शांति। बाबा की यादगार शिवरात्रि टर्न में आप सभी बाबा के बेहद घर में पधारे हैं। हम इसी डायमंड हॉल में बरसों से प्यारे बाप दादा के संग इस पावन त्रिमूर्ति शिव जयंती का पर्व मनाते रहे हैं और अपनी इन आंखों से प्यारे बाप दादा को दादी गुलजार जी के माध्यम से झंडा लहराते हुए भी देखते आए हैं। अभी 82वीं पावन शिव जयंती हम सब मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 82 वर्षों का शिव बाबा के दिव्य कर्तव्य का इतिहास हम सबकी बुद्धि के स्क्रीन पर आ रहा है। ये कितने बड़े आश्चर्य और हम सबके सुखद सौभाग्य की बात है कि लोग तो सिर्फ यादगार मनाएंगे पर हम सभी ने प्रैक्टिकल धरा पर आए हुए शिव बाबा को विश्व कल्याण का कार्य करते हुए इन आंखों से देखने का ज्ञान नेत्र से समझने का सौभाग्य पाया हुआ है। संगम युग में जो कुछ पुरुषार्थ हम करते हैं उसी के यादगार ये त्योहार बनते हैं, भक्ति के रीत रस्म बनते हैं। हम रोज चैतन्य दीपक बनकर स्वयं चैतन्य ज्योति बिंदु बनकर बाबा को याद करते हैं, उसी का यादगार भक्ति में दीवा जगाकर फिर भगवान को याद करते हैं। क्योंकि हम स्वयं स्मृति स्वरूप बनकर ज्योति बिंदु आत्मा के स्मृति स्वरूप बनकर बाबा को याद करते हैं। हम शरीर से यहां रहते हुए बुद्धि से सदा ऊपर असली घर में रहते हैं। जीभ के रस और स्वाद से, इंद्रिय रसों से बुद्धि निकालकर सर्व आकर्षणों से मुक्त होकर हम बुद्धि से ऊपर रहते हैं, बाबा के पास रहते हैं, उसी का यादगार उपवास करते हैं। हम एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाप दादा के आदेश को सिर माथे चढ़ाते हैं, एक के आदेश पर चलने का यादगार भक्ति में एकादशी पर्व मनाते हैं। हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर ज्ञान लोप हो जाता और भक्ति में यादगार रसम बन जाते हैं। हम संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं, सुलह कला संपूर्ण, टोटल संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते हैं और वे पूर्णिमा का व्रत करते हैं। हम यादगार भी देख रहे हैं कितनी श्रद्धा से, है ना। भक्तों को कोई भगवान रोज कहने नहीं जाते हैं, उनको कोई भगवान का सही ज्ञान नहीं है, उनके सामने समय का कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन भावना और श्रद्धा से आज तक ये रीत रस्म करते, व्रत उपवास करते। तो संगम युग में इन रस्मों को देखकर हमें स्व चेकिंग का मौका मिलता है कि भक्त इतनी श्रद्धा से यादगार मना रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल संगम युग में रोज नित्य भगवान से पढ़ते, हम इतने निश्चय लगन से बाबा के हर आदेश पर चलते हैं, ये स्वदर्शन करने का हमें मौका मिलता है। शुक्रिया उन भक्तों का, उनके निमित्त हमारा पुरुषार्थ भी तेज होता है कि हम खुशी खुशी से, बाबा ने तो कह दिया, समझा दिया, अब हमें बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, कोई हमारे पर ध्यान दे या ना दे, हम स्वयं पुरुषार्थी, स्वतः पुरुषार्थी बनकर बड़े उमंग उत्साह से और एक्यूरेट श्रीमत मुताबिक पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये हमें बार बार स्व में देखने की आवश्यकता है। महाशिवरात्रि का पर्व शिवजी पर भक्ति के शब्दों में कहें, क्या क्या अर्पण करते रहते हैं, सबको पता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अक और धतुरा चढ़ाते हैं और यादगार तो कितना बड़ा यूपी जोन का ही काशी करवट का कि ऐसे भी भक्त नामी ग्रामी प्रसिद्ध नहीं लेकिन ऐसे भी गृहस्थी भक्त हुए हैं जो शिवजी के नाम पर स्वयं बलि चढ़ जाए, कुएं में कूद पड़े, उस तलवार से गला कट जाए और उसको सबसे बड़ी कमल पूजा उससे कहते हैं। हमें प्रैक्टिस कल जीते जी शिव बाबा के नाम पर मर मिटने का मौका मिला है। बाबा का ज्ञान जिस दिन प्राप्त हुआ और जिन्होंने बाबा को परख लिया कि ये वही भगवान जिसको जन्म जन्मांतर से हम पुकारते रहे वो धरा पर आए हैं, अभी उन्होंने विश्व कल्याण का यज्ञ रचा है, प्रैक्टिकल आत्माओं को पावन बनाने का ये भगीरथ कार्य चल रहा है, हम सब जानते हैं, निश्चयी बने हैं। तो पहले ही दिल का सौदा हो जाता, आत्मा मन ही मन विवेक से शिव बाबा पर बलि चढ़ती और निर्णय कर लेती है कि बाबा अब मैं आपका हूं। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं, दिल का सौदा। आत्मा फैसला कर लेती है कि अब मैं आपके हूं। ये बहुत बड़ा हमारा बाबा के साथ पहला वायदा, वचन, प्रतिज्ञा, सौदा जो भी कहो कि अब मैं तेरी हूं। जीवन में हम अनेकों के बनते हैं, रिश्ते हों या ना हों, कोई ना कोई कारणों से प्रभावित होकर मन ही मन पता नहीं कितनों के हम बनते रहते, ये तो हर एक खुद अपने आप को जानते। समाज के हिसाब से दिखाने के संबंध वो तो सबके बीच किए हुए एग्रीमेंट है, लेकिन आत्मा किसी न किसी कारणों से कितनों की बनती रहती है। पर जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, विवेक के नेत्रों से ब्रह्मा तन में आए हुए शिव बाबा को पहचान लिया, शुरू में बार बार ये निश्चय पत्र हम लोग लिखते थे कि वो ही परम पिता ब्रह्मा तन में आए हैं और ये संगम युग विश्व कल्याण का युग भगीरथ कार्य हो रहा है। तो उस समय हमारा सबसे पहला समर्पण हो जाता कि मैं आपकी हूं, अब मैं और किसी की नहीं। और इसका अर्थ है कि अब मेरे मन और तन पर आपके सिवाय और किसी का अधिकार नहीं है। ये है समर्पण। समर्पण शब्द ही बताता है सम अर्पण। समर्पण कोई गले पड़ने की बात नहीं है कि अब मैं आपकी हूं, पर सम बनकर बाबा जैसा ज्ञान स्वरूप बनकर, निश्चयात्मक बुद्धि बनकर, पवित्रता की सत्यता को अपना कर अर्पण की अब मैं आपकी हूं। भल बाबा तो हमें बड़े विशाल दिल से स्वीकार करता है कि आप जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, ये बाबा कहता है, ये हमारे कहने की बात नहीं है। मैं जो हूं जैसी हूं आप स्वीकार करो, ये तो गले पड़ने की बात है, सिर पर पड़ने की बात है। ये बाबा कहते हैं कि आप जो हैं जैसे हैं मेरे हैं। हम बच्चों का कहना तो ये है कि बाबा मैं आपकी हूं और अब आप जो कहेंगे वैसी मैं बनती जाऊंगी। ये है समर्पण। इसको समर्पण कहते हैं कि अब आप जैसे कहेंगे, जैसा चाहेंगे ऐसी मैं बनती जाऊंगी। और बाबा ने हमें बहुत समय की मार्जिन दी है बनने के लिए। इसलिए हमारे तरफ से बाबा को ये समर्पण मिलना चाहिए कि बस अब और किसी के प्रभाव में और किसी के राय मत पर मुझे नहीं चलना है। समर्पण का मतलब ये है। फिर आप घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, समर्पण वो है कि अब सिर्फ श्रीमत, मेरी मनमत भी नहीं, क्योंकि मैं भी पुरुषार्थी आत्मा हूं, पूर्ण और परम नहीं हूं। परमत भी नहीं, फिर वो ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी आत्मा है, उनकी मत पर भी नहीं। और इसके बाद और किसी का तो सवाल ही नहीं है। जो बाप दादा के स्थान पर टोटल यज्ञ के जो हमारे बड़े बैठे हैं प्रैक्टिकली, वो जो हमें कहते हैं श्रीमत के अनुकूल बातें, वो सिर माथे। अब मुझे बाकी रही शेष जिंदगी, बाबा आपके ही कहे अनुसार जीना है। बचपन में ऐसा खेल करते थे बच्चे आपस में कि भगवान जो कहे वो आप करेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे तो हां करते थे कि हां, माना यही समझते कि भगवान कहे वो सब हम करेंगे, इतना मटका पानी पी जाएंगे तो हम कहते थे हां। शेर आ जावे तो भी नहीं डरेंगे, तो कहते थे नहीं डरेंगे। अब समझ रहे हैं, अब प्रैक्टिकल भगवान कह रहे हैं, उनको हम बच्चों से सबसे बड़ी अर्पणमयता यही चाहिए कि वो कहें ऐसा हम करें, है ना। किसी के आगे समर्पण तो इसको ही कहा जाता है। बाबा के आगे हम समर्पण हैं, हम सबने ये बाबा से ज्ञान में आए तब से ये फैसला किया है कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा कहते ना, स्वप्न में भी किसी की परछाई ना पड़े। बाबा कहते हैं ना कि तुम शिव व्रता हो, शिव बाबा हमारा पिता भी है तो शिव साजन भी है। इसलिए पतिव्रता या पिता व्रता, हम शिव व्रता है, इसलिए बुद्धि में स्वप्न में भी बाबा कहता कि कोई देहधारी की परछाई न पड़े। आज भी बाबा ने आत्मभान की कितनी बात पक्की कराई। जो अभ्यास हम करते हैं उसकी रिजल्ट आदत बननी चाहिए। बाबा ने कहा ना, आदत पड़ जाए, टेव पड़ जाए, नेचुरल आत्मभिमानी रहने की, आत्मा को देखने की, तीसरे नेत्र से देखने की, बाबा के प्रति समर्पण हम हैं, इसलिए उनको जो पसंद है वही मुझे करना है। और ये लौकिक संबंधों में भी है, जहां प्यार है, संबंध है पिता पति स्वामी मालिक, वहां जहां इस प्रकार के संबंध हैं वहां तो ये डिसिप्लिन है ही कि अब अपनी इच्छा और रुचि अनुसार नहीं जीना है, पर उनको जो पसंद है वैसा पहनना है, वैसा खाना है। हम दूसरों से बात करते हैं, उनको पसंद नहीं है तो नहीं करना है। पहले तो संबंधों में वफादारी और यही अर्पणमयता रहती थी। आज अगर वो चीज नहीं है तो दुनिया में भी इसको कलियुग का प्रभाव माना जाता है, वरना भारत में तो हर कहते ना आर्य नारी है, आर्य पुरुष, और आर्य शब्द का बाबा तो अर्थ बताते ही है ना कि आर्य माना श्रेष्ठ, सेंसिबल। आज भी अगर इस प्रकार के रिश्तों में वफादारी नहीं है तो उसको कलियुग का प्रभाव माना जाता है। हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऊंचे उठ चुके हैं, हम डायरेक्ट शिव योगी हैं, सत्य ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो हमारी भी, हम सबकी भी ये धारणा है कि जो बाबा को पसंद आए वो ही मुझे करना है। अगर कोई देहधारी को याद करना बाबा को पसंद नहीं है क्योंकि उसमें हमारा अकल्याण है, शायद हम नहीं समझ रहे हैं, तो उस प्यार से बाबा हमें कहते हैं कि और किसी को याद नहीं करना है। और कोई मुझे याद आवे नहीं, मुझे किसी की खींच ना हो, वरना बाबा से बेवफाई मानी जाएगी, अर्पणमयता तो दूर रही। हमारी तो समर्पणमयता की बात है, समान बनकर सन्मुख अर्पण, उसको समर्पण कहेगी। ये भाग्य तो हमें ही मिला है कि भगवान आया हो और उनके सन्मुख जीवन देने का मौका मिला, और दास के रूप में नहीं, सेवक के रूप में नहीं, भगत के रूप में नहीं, भगवान ऊंचा उठाकर हमारा समर्पण चाहते हैं। ये कितनी ऊंची बाबा की दृष्टि है हम बच्चों के लिए। तो हम भी बाबा को कहते हैं कि बाबा, हम भी कोई कमी नहीं रखेंगे, आप एक्यूरेट चाहते हैं और हमें इतना सुख देते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं, तो हम भी अपनी अर्पणमयता में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो मैं बाबा की और कोई नहीं मेरा, और उनको जो पसंद, वो जो कहें वही मुझे करना। अगर ये आंतरिक मन ही मन धारणा हो जाए, फैसला हो जाए, और आत्मा समर्पण हो जाए, फिर बाकी सब बातें आसान है, सहज है, कोई मुश्किल नहीं। फिर मेरे संकल्प जो बाबा कहते हैं कि मानसिक स्खलन भी नहीं, चंचलता भी नहीं, माना मुझे उसके बारे में ही सोचना है दिन रात। बाबा ने कहा ना, अपने आप फिर वो याद और सेवा का डबल लॉक, अटेंशन और चेकिंग का डबल लॉक अपने आप लग जाता है। हम जीते जागते सोते हम याद और सेवा में ही व्यस्त होंगे। कोई क्यों हमारी चेकिंग करे और कौन कहां तक हमारा ध्यान रखेगा? क्यों, मुझे खुद बनना है ना, मुझे खुद बनना है समान और सन्मुख अर्पणमय, तो कहने की क्या आवश्यकता है? और मेरा ऐसा कच्चा सौदा क्यों हो कि मैं अकेली हूं, कोई बड़े देखने वाले ना हो, तो मैं लक्ष्मण रेखा के बाहर क्यों जाऊं, क्यों जाऊं? ज्ञान बुद्धि में भरा है ना, विवेक रोज बाबा से मिलता है, और मुझे ये पवित्र ज्ञानी योगी दिव्य सेवाधारी जीवन पसंद है, तो फिर उसमें कमजोरी मुझे क्यों लानी है? भारत देश में ऐसे भी लोग देखे हैं, आप सबने भी देखे होंगे, शादी करते ही पति विदेश गया और कोई कारण से 15 दिन में एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, जीवन भर वो माता भगवान के नाम और उस शादी के संबंध के सौदे के नाम, पूरा जीवन पवित्र और भक्त बनकर रहे। ऐसे कितने भाई बहनों को हम अपने आसपास के समाज में देखते हैं। मानवीय संबंधों में भी इतनी अर्पणमयता और वफादारी। हम सब तो भगवान से जीवन जोड़े हुए हैं, है ना? हमने तो जीवन सिर्फ बुद्धि योग नहीं जोड़ा है, हमने प्रैक्टिकल जीवन जोड़ दिया है बाबा से। उसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। और इस आध्यात्मिक समर्पणमयी स्थिति बनाने तो हर किसी को है, उसमें कोई सेंटर में आके रहे और घर में रहे वो अंतर की बात ही नहीं है। रावण के राज्य में, रावण की शोक वाटिका में, रावण के राक्षसों की चौकीदारी के बीच एक सीता का निरंतर राम राम याद रखना हम बच्चों का ही तो यादगार है, हम ही तो हैं वो। उसी के नाम जीना, उसी के नाम सुरक्षित रहना। वही मेरा रक्षा कवच। और बाबा ने कहा है कि तुम अगर सच्चे सच्ची मेरी सीता है, अगर कोई गंदी दृष्टि से आएगा तो बाबा भी उनको ऐसा साक्षात्कार करा के भगा देगा। ये बाबा ने कहा है ना। शर्त कि मैं खुद देह में ना फंसी हूं। जब खुद के ही देह को भूलना है तो और देहधारी को याद करने का तो सवाल ही नहीं है। और हम सब एक दो को भी जानते हैं कि हम सब पुरुषार्थी हैं, हम कोई संपूर्ण नहीं बन गए हैं। इसलिए ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई भी आत्मा या उसके नाम रूप में बुद्धि नहीं मुझे फंसानी है। हम वो शिव को समर्पित सच्ची पार्वतियां एक टक सूर्य को देखने वाली ऐसी सखत तपस्या पार्वती ने की थी ऐसा शास्त्रों में गायन है। ये हम बच्चों का गायन है और हमें प्रैक्टिकल बनना है अभी कि एक टक निरंतर नेचुरल स्वतः बाबा मुझे याद रहे। फिर अपने आप इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखने की अवस्था सहज बन जाती कि इन आंखों से जो कुछ देखें व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि अंदर से आत्मा इतनी डिटैच है और ऊपर है कि कुछ भी देखते हुए भी उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं आएगा। अच्छा प्रभाव तो अच्छा बनाता है। अक्सर जब हम कहते हैं ये उसके प्रभाव में आ गए, माना गलत प्रभाव नहीं आए। और आज तक 82 वर्षों के बाद भी अभी भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, हमारी दादियां, हमारे बड़े जो दुनिया भर में घूमे सेवा के लिए, लाखों आत्माओं के सेवा संपर्क में आए, पर कोई उनकी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर सका। ये कितनी बड़ी मर्यादा और धारणा है। ये तो साधारण नाम रूप में वही सर्वश्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, बाबा, मम्मा, दादियां, दीदियां, दादाएं, जो आज भी यज्ञ संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत लोग उनको भी मिले, जीवन में आए, बहुत धन वैभव उनके सामने भी ऑफर हुए, देश में, विदेश में, कहीं भी अटके नहीं, फंसे नहीं। निरंतर बाबा यज्ञ ही सदा उनको याद रहा कि यज्ञ में सब कुछ जाए। किसी ने अपना कुछ बनाने की सोची नहीं, बुद्धि में ही नहीं आया, सब बाबा के यज्ञ में लगे, सेवा में लगे। हमें भी धन, साधन, व्यक्ति, मकान, दुकान, सुविधाएं, हमें भी क्यों खींचे? हम तो इसके लिए आए ही नहीं ना, हम तो इसके लिए आए ही नहीं। बाबा के पास हम किस लिए आए? उनके जैसा बनने के लिए आए। यज्ञ में नहीं था तब भी, है तो भी, और बढ़ेगा तो भी, हम तो सदा एक बाबा के हैं। सेवा का ये रिटर्न, मान, शान, स्थान, साधन, सुविधाएं, साथी, वैभव, कुछ भी में हम अटके नहीं, तो बाबा कहते हैं कि तुम सच्चे महारथी और महावीर। और अब चूंकि अंत के समय पर हम पहुंच गए हैं, अब बाबा भी इस कार्य को कंप्लीट करना चाहते हैं। साकार रूप में 33 वर्ष, अव्यक्त रूप में 49 वर्ष, इतनी पालना हम सबको मिली है, भल हम कभी भी आए हैं, पर मुरलियों का खजाना, इतने वर्षों की साधना के फल स्वरूप ऊंचा उठा हुआ, स्पष्ट हुआ, भरपूर यज्ञ हमें मिला है, तो ये 82 वर्षों की साधना का फल हम भी खा ही रहे हैं। तो अब बाबा हम बच्चों से हमारी संपूर्णता चाहते हैं। अब ही हमारे दिली समर्पण की अति आवश्यकता है। कितना बड़ा संगठन में बल पहुंचाना है और इतने बड़े विश्व का कल्याण करना है, तो जो अपने आप को समझते हैं कि हम बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हैं, समर्पित बच्चे हैं, बल कहीं भी रहते हैं, घर में रहते हैं, सेंटर में, मधुबन में, जोन में, सब जोन में, जहां भी रहते हैं, पाठशालाओं में, पर हमारे तरफ से गारंटी है बाबा को कि इस अंतिम संपन्नता में बाबा हम सदा आपके साथी हैं। चाहे माध्यम हमारी दादी, क्योंकि माध्यम ठीक होगा तो सन्मुख बाप दादा आएंगे, माध्यम बीमार है तो फिर, पर बाबा तो हमारे साथ ही है, हम तो उनसे जुड़े हुए ही है ना। हमारी तपस्या तो अब डायरेक्ट हो रही, ये पालना के आधार भी ड्रामा अनुसार कम हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट पालना का ये समय है अब कि हर आत्मा डायरेक्ट अब ले सकती है, क्योंकि इतने वर्षों बाबा ने हमें दिया है। तो अब हमारे में जरा भी अलबेला पर नहीं आना चाहिए कि बाबा तो आएंगे नहीं। तो इतना जो पढ़ाया, सिखाया, समझाया, वो तो हमारी बुद्धि में है ना, वो हमें अपने आचरण से बताना है सबको। हम 9 लाख ब्राह्मण शक्तिशाली रहेंगे, और शक्तिशाली उसको ही कहा जाएगा ना कि हमारे बाबा दादियां देखे न देखे, कहे न कहे, मिले न मिले, पर हम उनके कहे अनुसार, उनकी श्रीमत अनुसार और ज्यादा पुरुषार्थी, एकाग्र, पक्के नियम मर्यादा वाले, यज्ञ वफादार और यज्ञ के अनुशासन में चलने वाले हम बने रहे, तब तो हम 33 करोड़ और विश्व की 700 करोड़ आत्माओं को संकल्पों से, चेहरे से संदेश दे सकेंगे कि हम हैं उनकी पालना ली हुई वो रचनाएं। देख लो, हम भी ऐसे बाबा जैसे बन के उन आत्माओं में, आने वाले नए ब्राह्मण भाई बहनों में हम शक्ति भर सके। और ये बहुत जरूरी है हमारा आपस में मधुबन में आकर मिलना, इस भूमि पर आना, इस वातावरण में आना, यज्ञ में 8 दिन पलना रहना और हमारे बड़ों से मिलना, सबके चिंतन क्लासेस का लाभ लेना, ये तो एक बाप दादा मिलन के नाम पर कितनी ऊंची प्राप्तियां हमें होती हैं। तो सच्चे और पक्के ब्राह्मण को तो ये संकल्प ही नहीं आना चाहिए कि हम मधुबन नहीं जाएंगे, है ना। ये तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अब ही हमें बाबा की पालना का रिटर्न देना है। बाबा जैसा, दादियां जैसा, बड़ों जैसा, हमें बाबा से वचनबद्ध रहकर इस यज्ञ के वर्तमान को चलाने में मददगार रहना है। उसके लिए भल कुछ हमें छोड़ना भी पड़े, त्याग भी करना पड़े, पर हम विघ्न ना बने यज्ञ के लिए और आत्माओं को मजबूत बनाने में हमें मददगार बनना है। हम अपने चेहरे और चलन से बता सकें कि फॉलो फादर किसको कहा जाता है। कोई हमारे पीछे चले तो भी बाबा तक ही पहुंचे, ना हमारे में फंसे, ना कहीं और डाइवर्ट हो जाए, ऐसा बनकर दिखाने का और बड़ों को निश्चिंत बनाने का यही तो समय है। यही तो समय है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगी, पर मैं बाबा की बन के रहूंगी, बाबा की श्रीमत पर रहूंगी। तो समर्पण, सच्चा समर्पण, क्योंकि हमें तो पूरा ही बलि जाना है, थोड़ा बहुत तो भक्त करते हैं, बल्कि उसकी अर्पणमयता हमें भी प्रेरणा देती है, माना वो भी बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ ज्ञान नहीं है इसलिए वो स्थूल कर रहे हैं, वरना आधा कल्प से उनको कौन सा बाप दादा मिलन था, उनको कहां कोई ज्ञान मुरली मिलती है ना, उनको तो सही ज्ञान भी नहीं। पर भगवान है, कोई कोई है, बस इस श्रद्धा से वो इतने कुर्बान रहे। हम सबको तो मालूम है सच में भगवान आकर ये कार्य कर रहा है, अब तक करता रहा है, कराता रहा है, उसी की श्रीमद् ज्ञान पर ये सब चल रहा है। और अब तो आप जानते हैं कि समय, परिस्थितियां, ड्रामा भी बाबा के साथ है। तो हम बच्चे भी तो बाबा के साथ है ना, हर घड़ी हम साथ है, हर बात में हम साथ है। हमें बाबा ने बहुत दिया है, कुछ ना भी मिले तो अब हमारे तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अब समय है हमें बाप दादा की पालना का जलवा दिखाना है। इसलिए इस बार काशी करवट, बस कुछ भी बाकी न रहे, पूरा स्वाहा हम सबको होना है और जल्दी से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।